प्रेम की का स्वभाव है किसी, ये जाएगा नहीं। ये महाप्रभु स्वयं कौन है तो वो अपनी कुटिलता कैसे छोड़ेगी। इसलिए कुटिल होने के नाते अपने प्रेम को छिपाकर और दीनता वशता अपने को इस रूप में दिखा, ये कुटिलता का ही है। इसी को कहते हैं कुटिल, क्योंकि वो प्रेम के सबसे बड़े शिक्षक हैं। तो वही जब कुटिलता छोड़ देंगे तो उसको क्या होगा। इसलिए कुटिलता को रखते हैं अपने को यहाँ पर मायावादी सन्यासी पर, किंतु यदि उनको कोई ऐसा ही मान ले तो वो जाएगा एकदम सर्वनाशी का। इसको समझना चाहिए, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। वैष्णव को समझना बड़ा भारी कठिन है। वैष्णव तो स्वभाव बचकर कह देगा हम मायावादी हैं, हम
विषयी हैं,
विषयी घोर विषयी। अरे घोर विषयी कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है कैसे,
जिसके
प्रति वो है वो ठीक ही कह रहा है। जो कृष्ण ही तो विषय है, उनके प्रति मैं लिप्त हूं तो मैं विषयी ही। किंतु समझना बड़ा भारी थी, यदि कोई कह दे कि चैतन्य महापुरुष भगवान है, भगवान नहीं स्वयं भगवान है और वो सत्य स्वरूप है, इसलिए जो कुछ महाप्रभु कह रहे हैं वो सबको संकल्प सबको स्वरूप होने के कारण जो कुछ कहा है वो परम सत्य कहा है, इसलिए वो मायावादी सन्यासी थे। बस हो गया उनकी कुटिलता को कोई नहीं समझ। इसलिए भक्ति तत्व नहीं जानी मायावाद विभाषी महाप्रभु का, मुझे तो भक्ति है ही नहीं है, मैं मायावाद अर्थात भक्ति के विरुद्ध भाव में मैं ही ब्रह्म हूं। किंतु ऐसी बात नहीं, प्रकाशानंद सरस्वती इसमें बड़े भाई जी के पंडित मायावाद अद्वैत बात वो निर्विशेष बात, उनको सरल सहज थोड़े में ही थोड़े से ही बातों में निरुत्तर कर दिया, थोड़े से ही बातों में, और उनको भक्ति तत्व में लेकर के सकते। ऐसे ही इतने बड़े तार्किक वो प्रकाश और उनको भी थोड़े से चुप्पी बजाते हैं, थोड़े से ही बातों में। ये साधारण काम नहीं है, इन दो तीनों के कारण एक राय रामानंद एक वे प्रकाशानंद, ये तीन चारों को जब महाप्रभु जी ने सहज रूप में अपने मत में ला दिया, विश्व के कितने बड़े दिग्विजय थे सब अपने आप। एक और क्या बाल्यकाल में वो दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी कुहार, इससे समस्त लोगों की चोटी उनके हाथ में आ गई और सब ने उनके बात को निर्दा, ऐसा नहीं करने से प्रचार नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा तो ये मैं मायावादी हूं, किंतु यथार्थ में मायावादी नहीं, संन्यास भी लिया उसी संप्रदाय से किंतु यथार्थ में नहीं। सार्थम संगीनो मौन में देखो कैसे झूठे, जिसका भी परिप कह रहे हैं कृष्ण जैसे झूठ बोलते हैं, मैं मट्टी में खाई गई ऐसे ये झूठ बोल रहे हैं क्या। सार्वसम सार्वभौम संग मोर मौन निर्मल गई, अरे तुम्हारे संग से तो उनका मन निर्मल हुआ और आप क्या कह रहे हैं उनके संग से मेरा मन निर्मल। कितना दूसरों को ये सम्मान देते हैं। साधु भट्टाचार्य जी मायावाद में दूषित उनका हृदय था, मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं करते भगवान निराकार है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या नहीं है भाई, जगत सत्य है किंतु तात्कालिक सत्य है, हम सब परिणामवादी है। अभी किसी चीज का जन्म हुआ, स्थिति हुई, कुछ बढ़ा बढ़कर के फिर प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ का धीरे धीरे घटने लगा, फिर जर्जर हो गया, अंत में जायते अस्थि बरसते विपरिणम के अपक्रिय के ये स्वभाव प्रत्येक संसार के चीजों में। ये संसार अभी जो दिख रहा है एक पल के बाद में फिर ऐसा नहीं रहेगा, जैसे यमुना जी का पानी अभी जो देख रहे हैं वो पानी वहां पर नहीं रहता, कहां चला गया, यदि धारा है न जाने कहां चला गया, ऐसे जलक्षण क्षण में परिवर्तित। हमारा शरीर अभी एक सेकंड पहले जो था ऐसा नहीं है, क्यों
परिवर्तन हो रहा
है? वो परिवर्तन इस ढंग से हो रहा है कि हमारे समझ में नहीं आता। कुछ दिनों के बाद में देखने से ऐसा पता लगता है, सर्वम के सामने हमारा मन निर्मल। कृष्ण भक्ति तत्व कहो कहा, मैंने कह दिया कृष्ण तत्व किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, आप हमको बताएं। उन्होंने कहा तिहु कहे अन्य नहीं ज्ञानी कृष्ण कथा, मैं कृष्ण कथा नहीं जानता। कौन रामानंद जानते, रामानंद सभी जानते हैं। एक और भी व्यक्ति थे प्रद्युम्न,
प्रद्युम्न
ब्रह्मचारी, वो महाप्रभु के पास में गए। जो प्रभु हम कुछ हरि कथा सुनना चाहते हैं, महाप्रभु मैं तो हरि कथा से जानता नहीं, मैंने रामानंद से कुछ सुना था वो भी भूल गया। तो रामानंद के पास में चले जाओ सुनाओ। तो वो गए सुनने के लिए। ये समझ रखिए बिना हरि कथा सुने कल्याण नहीं होगा, चाहे आप लाख करें लाख रटें और पचें और कुछ करें, बिना साधु संत के हरिनाम भी स्वयं भगवान है किंतु वो निर्मल नहीं होगा। हरिनाम आभास का आभास रह जाएगा या अपराधमय होता रह जाएगा। इसलिए कोटि कोटि जन्मों में हरिनाम करने से भी वो काम पूरा नहीं होगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। वो धन जन पुत्र संपत्ति स्वर्ग और यहाँ तक की मुक्ति देकर के वर्ष निरस्त हो जाएगा। और साधु संघ में वही नाम शुद्ध होकर के क्रम से पहले शुद्ध होगा, फिर रसमय होगा, फिर पूर्ण रसमय होगा, स्वरूप संसार में आगे बढ़ते 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 भाव महाभाव तक भी हो सकता है, किंतु साधुओं के संग ऐसे नहीं। तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता, राय रामान उन्होंने कहा जो राय रामानंद जो सब जाने, तुम्हारा था आई नाम, मैं तुम्हारे पास में आया इसलिए कि मैं कुछ कृष्ण कथा भगवत तत्व और भक्ति तत्व की बातें सुनना चाहता हूँ। हम लोग भी यहाँ पर एकत्र प्रतिदिन होते हैं, इसलिए हमारी भक्ति कृष्ण के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों का इधर उधर अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आ जाते हैं, और कुछ लोग सचमुच नहीं आते हैं, जैसे इसमें कोई अच्छी बात हो सके, हम लोगों का हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध भक्ति हो जाएगी और हमसे बात हो जाएंगे। तो तुम्हारे निकट आया तुम्हें मोरे स्तुति करो सन्यासी ज्ञान, और आप हमको हमारा स्तुति करें कि आप सन्यासी हैं और हमको हरि कथा नहीं सुना रहे और स्तुति कर रहे हैं। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, कौन महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं एक ब्राह्मण बालक हूं और उसमें भी विद्वान हूं और उसमें भी सुंदर हूं और उसमें भी सन्यासी हूं, तो इतना गुण हो गया। तो और आप कौन हैं? एक तो है शुक्र जाति से कर्ण, उड़ीसा में कर्ण जाति होती है, कर्ण जाति होती है, और उसमें राज कर्मचारी और उसमें भी गृहस्थ, मैं कहां नीचे, आप मुझको सोच रहे हैं जैसे ऐसे और मुझको बतला रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं सन्यासी हूं विद्वान हूं, इसलिए आप मुझको वंचना कर रहे हैं। कौन वंचना कर रहा है? राय रामानंद जी। किनको? महाप्रभु। इसलिए आप हमको हमारी कौशुति कर रहे हैं, किंतु देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा है शिवा मित्र शिवा न्यासी शूद्र के नुनाए जय कृष्ण तत्वता कई गुरु शिवा विप्र क्या विप्र अथवा संन्यासी हो अथवा शूद्र हो कोई भी क्यों न हो जाति के अंतर्गत हो या बाहर भी हो जय कृष्ण तत्वता कई गुरु जो कृष्ण के तत्वों को जानते हैं हमारे समस्त संदेहों को दूर कर सकते हैं उनकी अनुभूति है वही व्यक्ति जब आत्माएं गुरु है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता, दूसरों को नहीं बतला सकता है, उसके हृदय में नहीं उतार सकता, तो वो गुरु नहीं। इन्होंने क्यों कहा? महाप्रभु जी कह रहे हैं, शायद आप ये समझ रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, ब्राह्मण हूं, और आप अपने को शूद्र समझ रहे हैं, किंतु तत्ववेत्ता है। फिर भी शास्त्रों में लिखा है अगस्त संहिता एक है, और कोई एक ग्रंथ उसमें लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जातियां और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ बांध पर। इसमें ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु है और समस्त आश्रमों का गुरु सन्यासी। यदि वही ब्राह्मण और इधर सन्यासी हो गया तो बाकी चारों जो आठ हैं आठों का वो गुरुकौन ब्राह्मण जो सन्यासी। यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो ब्राह्मण जाति का भी हो और साथ साथ में सन्यासी भी हो तो उसको गुरु कर देना। यदि कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय वंश संस्थान, तो उसको ऐसे ब्राह्मण का कम से कम करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता तो कोई वैश्य है तो उसको क्षत्रिय गुरु बना ले। जब शूद्र है तो क्या करे?
वैश्य गुरु, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण।
और यदि कोई गृहस्थ है तो वो वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी को भी गुरु कर सकता है। ब्रह्मचारी गुरु करेगा किसको?
सन्यासी।
और वानप्रस्थ किसको करेगा?
सन्यासी।
ऐसा नियम होना चाहिए।
सन्यासी किसको गुरु करेंगे?
सन्यासी बनकर के सन्यासी हो गया, अब वो सबका गुरु हो गया, परमहंस हो गया, उसका गुरु कोई नहीं। किंतु नरम संसराष्ट्र या और सब भागवत इत्यादि में, श्रीमद् भागवत में या उपनिषदों में यह बतलाया, यह नियम जेनरल है। जेनरल माने
साधारण रूप में,
साधारण सबसर साधारण, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, जो भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, जो केवल खाना की पूर्ति करना चाहते हैं। खाना पूर्ति एक होती है
ना,
स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं, तो कुछ छात्र होते हैं मन से पढ़ते हैं और कुछ छात्र होते हैं वो खाना पूरी करते हैं। जो खाना पूरी करते हैं वो पांच साल फेल होते हैं, दस साल फेल, और जो पढ़ने वाले होते हैं फर्स्ट सेकेंड उसमें से करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। तो वो खाना पूरी करने वाले लोगों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए कह दिया गया, जब ब्राह्मण हो और ब्राह्मण में भी सन्यासी हो तो वो कुछ भी नहीं जानता है तो उसको गुरु कर, कोई बात केवल जन्म देख लो और देख लो जैसे काला गोरा वो ब्राह्मण है, बस ये। किंतु तत्वदर्शी व्यक्ति जो भगवान को पाना चाहते हैं उसके लिए ये सब नियम नहीं है। उनके लिए जहां भी जिस कुल में भी, कुल के बाहर भी यदि तत्वदर्शी कोई व्यक्ति हो, भगवत तत्व जानने वाला हो, कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व का जानना हो, वही गुरु है। जैसे विदुर जी थे, विदुर जी कौन कुल के थे? कौन जाति? उनकी जाति क्या कहा जाए? जाति पुत्र धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र के नहीं, धृतराष्ट्र के पिता विचित्र वैद्य थे। वो भी बाप के संतान नहीं, औरत पुत्र हैं। औरत पुत्र किसके पास है? पिता कोई और हो और कोई व्यक्ति हो, उनके पिता थे विचित्र वैद्य, उनको कोई संतान नहीं थी। तो व्यास जी को उनकी माता सत्यवती जी ने स्मरण किया, बेटा हमारा कुल का संहार हो जाएगा, अब तो कोई बच्चा नहीं होगा तो फिर कुल ही बंद हो जाएगा, तो बच्चा हो। उन्होंने आगे ठीक है अपनी तुम दोनों अम्बा अम्बालिका को कह दो या नंगी होकर के हमारे सामने आ जाए। तो एक आई किंतु कांपती हुई एकदम शर्म के मारे लज्जित होकर के एक आई तो उससे जो हुए वो हुए पांडु
पांडु पांडु वर्ण हो गया
वो पांडु वर्ण लज्जा के मारे वो पांडु होकर के आई थी लज्जा से इसलिए उनका पुत्र ऐसा ही और एक आई लज्जा से मैंने आंख बंद कर दिया और उनके सामने आया तो उनका पुत्र उन्होंने कहा दासी ने कृपा कर अच्छा दासी को अपनी बुला तो उनकी जो दासी थी उनको बुला वो एकदम प्रसन्न चित्त से और स्वाभाविक रूप से उनके सामने आकर के खड़ी काजी बेटी तुम धन्य है तुमको सब सौभाग्यवान और सब सत्य ज्ञाता
अपराध का गुण अवस्थ कलश जन्म लिया गौतम जी सशत विश्व से जन्म लिया
इसलिए गुरु कौन है आत्मा अजर अमर है आत्मा की कोई भी जाति नहीं है किसी भी तथ से उसका जाति का निर्णय आत्मा से नहीं किया जा सकता और शरीर हार मांस और मेघ मज्जा का बना हुआ एक टुकड़ा है इसकी कोई जाति नहीं है ये जीवित नहीं इसमें प्राण आत्मा की वजह से दिख पड़ता है प्राण में भी चेतनता नहीं है वो वायु है पंच प्राण आत्मा एक पृथक चीज है पंच प्राण निकल जाने पर भी आत्मा रह सकती है कोई जरूरी नहीं उसके अधीन नहीं है चली भी जाएगी आत्मा स्वतंत्र है बल्कि भगवान के अधीन है ये पंच प्राण मान ले कि किसी कारण से इंजेक्शन देकर के उसको थिएटर हॉल में ले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए उस समय उनको बंद कर दे तब भी आदमी तो जीवित रहता ही है इसलिए इसके अधीन नहीं है इसलिए आत्मा अजर अमर है और ये सबसे बड़ी है इसलिए इस तत्व को और भगवत तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति है वही यथार्थ जो हमारे अंदर के मैल को आत्मा के मैल को दूर करके भगवान में स्थिति लगा दे वही यथार्थ हो कोई भी जाति कोई भी कहीं का ऊपर का हो उसके लिए कुछ यहां तक चैतन्य महाप्रभु इनको भी कह रहे हैं ये कारण किस लिए ये आप हमको बचाना मत कीजिए इसलिए कह रहे हैं उसमें भी आजकल कितने शब्द निकलते हैं हम लोगों के ये संप्रदाय में भी विचार आजकल निकला है शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का तारतम्य और इसी में सब बन रहे हैं एक बतलाया कृष्ण का स्वरूप होता है साक्षात शिक्षा गुरु और कृष्ण का स्वरूप है शिक्षा गुरु तो रूप बड़ा है कि स्वरूप बड़ा है अरे रूप और स्वरूप तो दोनों एक ही है रूप और स्वरूप में अंतर क्या है एक स्वरूप को देने वाले एक रूप को देने वाले इसलिए वहां पर कोई भी भेद तारतम्य नहीं है किसी को उन्होंने शिक्षा दी और किसी को एक दूसरे गुरु में बैठे जो है उनको शिक्षा दी किसी ने शिक्षा दी इसलिए ये सबका विचार ना करके भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना कुछ लोग कहते हैं शिक्षा गुरु ये प्रभुपाद जी ने इसकी टीका दी है इसी में प्रभुपाद जी ने कहा लोग कुछ लोग कहते हैं दीक्षा गुरु में ये देखना चाहिए ये ब्राह्मण है और सन्यासी है ये देखना चाहिए किंतु शिक्षा गुरु जहां पर भी कोई भी हो कोई भी व्यक्ति हो किसी भी जाति का हो वो सब तो जानना उससे ले लेना चाहिए किंतु दीक्षा गुरु में ये विचार करना जरूरी है कि वो सन्यासी और ब्राह्मण ये भेद सृष्टि ये निर्बोध लोगों का काम है दोनों एक ही तत्व है इसलिए जहां कहीं भी सुख गुरु मिले नारद जी का कौन से आ जाती है वो भी तो दासी पुत्र थे
गोस्वामी जी
सुख गोस्वामी जी थे
रथ को चलाने वाले क्या रथ के
साथ वैसे गौतम ऋषि जी और भी इसलिए
गुरु बने
प्राप्त बल्कि एक समय की बात है, एक लड़का था वो किसी अपने गुरु गौतम के यहाँ गया, एक थे गौतम, ब्राह्मण थे, ऋषि थे, ब्रह्मर्षि, एक लड़का उनके पास में गया, उनके पास में अध्ययन करने के लिए, वेदों का अध्ययन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। उन्होंने कहा कि अपना नाम गोत्र बतलाओ, बिना नाम गोत्र किए कोई भी काम उस समय नहीं होता, आप लोग घर में देखिए, इधर देखिए, जाओ जाओ। पास में गया, गुरु जी ने पूछा कि अपना नाम और गोत्र बतलाओ, इधर सुनो इधर सुनो। उसने कहा मेरा नाम सत्य काम है, मेरी मैया का नाम जवाला है और मैं इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता, मारा पर क्या कुछ भी नहीं, तो तुम जा अपनी मैया से पूछा कि तू किसका बेटा है और तुम्हारा गोत्र क्या है, सब मैं किसी को शिक्षा देता हूं ऐसे नहीं, उपनयन देता हूं, उपनयन देकर के और उनको शिक्षा देता हो गया। उसकी मैया से पूछा कि मैया हमारा गोत्र क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, हमारे वो गुरु जी पूछ रहे हैं, नहीं तो हमको नहीं स्कूल में भर्ती कर रहे हैं। तो उसने कहा जैसे जाकर के अपने गुरु जी से कह देना, मेरी माता जीवाकाल में पति विहीन की पति नहीं था, बहुत से पति हमारे थे, उसमें कौन से पति से तुम पैदा हुआ मुझको पता नहीं है, तुम कह देना कि हमारी मैया का नाम जवाला है, मैं उसका पुत्र हूँ, हमारा यही मास्टर है। तो ठीक ठीक जाकर के गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर के वो पास किया, ये मेरा नाम जवाला गौतम है, मेरी मैया ने ऐसा कहा है, जब मेरे युवावस्था में बहुत से पति थे किंतु मैं नहीं जानती जैसे से तू पैदा हुआ, ताकि इतना सत्य तो कोई ब्राह्मण ही नहीं बोल सकता है, तुम यथार्थ में ब्राह्मण हो, तुम सरल हो और सत्य कहते हो, इसलिए तुम ब्राह्मण के लड़के और तुमको ब्राह्मण समझ करके तुम्हारा उपनयन देकर के तुमको विद्या देता, बस उनको कोई गोत्र पुत्र की जरूरत नहीं।
यहाँ पर केवल गुणों के कारण
श्रीमद भागवत सत्य प्रमाणित ग्रंथ उसमें बतला रहे हैं कि एक ही सब देव थे, उनके 100 लड़के हुए, 100 लड़के में बड़ा वाला क्षत्रिय हुआ, वो पृथ्वी का शासन करता भरत महाराज हुआ, और उसमें 9 हुए 9 जोगेंद्र, जाति पाति से अति परमहंस हुए, ब्राह्मणों के भी गुरु हुए, और 81 थे वो क्या हुए,
परमगांधी
ब्राह्मण हुए। ये कैसे हो गया, पहले ऐसी था
और 9
यदि ऐसा ही गुण और कर्म पर आधारित होकर के गुरु के अनुसार में ब्राह्मण लोग काम करने लगे, क्षत्रिय लोग काम करने लगे, वैश्य लोग काम करने लगे, सब जगत फिर ऐसा ही सत्य युग हो गया। आजकल त्रेता युग तक ऐसा था, उसके बाद में कोई गुण हो न हो, कोई जरूरत नहीं, कोई साधन भजन हवन और ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मैंने क्या, ब्रह्मचर्य मैंने लोग समझते हैं स्त्री के साथ में नहीं रहना ही ब्रह्मचर्य है, या गलत है, ब्रह्म में विचरति इति ब्रह्म, ब्रह्म में विचरण करने वाला, सत्व से जान करके मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ, मैं सेवक हूँ और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उनको तत्वता से जान करके वैसे भजन इत्यादि करने का नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्म ब्रह्मे आचरती चलता है, चरती है, इसका सब तात्पर्य। हम लोग भी सचमुच में सभी स्वभावतः सभी लोग ब्रह्म हैं और जन्म से सभी शूद्र हैं, स्वरूप से हम लोग सभी ब्राह्मण हैं क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न है, और ये शरीर से जन्म लेने के कारण जन्म ना जाते संस्कार
योग्यते,
संस्कार से, संस्कार माने क्या, पहले वाला संस्कार शूद्र का जो था उसे हमारा जन्म हुआ, किंतु संस्कार माने अब इस जन्म के जो हमारा संग है उस संग से हमारा संस्कार दे रहे हैं, कौन दे रहा है, गुरु बंधु कैसे अपने संग के ऐसे जन्म डाल दिया और मन तो कह दिया संस्कार हो गया, ऐसा संस्कार नहीं होता। कुल लोग तो जानते ही नहीं इसे यह रस्सी किस लिए पहनाई जाती है, नहीं समझते। ये संस्कार के लिए दिया जाता है। कान पर चढ़ाओ तीन बार, प्रतिज्ञा करो जब ही उस पर जाओ। किस लिए? मैं ब्रह्म जातीय वस्तु हूं, भगवान तीन है, भगवान उनकी शक्ति
और
भक्त, भगवान भक्ति
भक्ति भक्त,
इस तरह से जीव तत्व माया तत्व भगवत तत्व ये तीन तत्व हैं। इस तरह से तीन 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 मिलकर के नौ गुण हुआ। इनके प्रति हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये सब उपनयन है, ये विद्याएं जान करके क्रम से अभ्यास करते करते उपनयति, ये विद्या उसको ब्रह्म तक ले जाती है, भगवान तक ले जाती है। इसलिए सब चीजों को नहीं जानते। आज ब्राह्मण भी जनेऊ खोल करके
पेड़ में टांग
जानते ही नहीं है किसी
पर। ये
विशेष करके विदेशों में जितने भी भारतीय हैं, यहाँ भी भारतीय लोग हैं और विदेशों में तो सब, क्योंकि जानते नहीं इन सबकों। इसलिए कहते हैं किस भी शूद्र कुल में भी कोई जन्म ले, कहीं भी ले, यहां तक कि स्त्रियां भी यदि तत्वदर्शी हैं, तत्वज्ञानी हैं, भगवत तत्व को जानते वो भी गुरु हो सकते।
उनका
आत्मा के साथ में संग तो होता है, उनका भी संस्कार होता है।
नहीं, इन लोगों का जैसे पांचरात्रीय दीक्षा विधान के द्वारा संस्कार होता है,
उनका मंत्र के द्वारा हो जाता है, कामकाश्री गोपाल मंत्र और ये सब मंत्रों के द्वारा हो जाता है। भगवान की भक्ति का भाव देकर के उनका संस्कार हो गया, वो परम पवित्र हो गई। इसीलिए गार्गी इत्यादि हमारे प्राचीन काल में जन्मना जी, अभी भी गंगा माता ठाकुरानी, ये सब गुरु तत्व है।
हेमलता ठाकुरानी गायत्री तो स्त्री है, तो स्त्रियों को क्यों नहीं दिया जाता?
क्या
गायत्री मतलब स्त्री है, स्त्रियों को क्यों नहीं दिया जाता?
स्त्री देने पर झगड़ा कर, जब उसका असल स्वरूप ही आ गया काम गायत्री में, तो नीचे वाला देने की क्या जरूरत है? यदि कोई परमहंस हो गया तो उसको जनेऊ लेने की क्या जरूरत है?
हम लोग तो ब्रह्म गायत्री को क्यों राधा जी के मंत्र मानते हैं,
अभी कल्पना करते हैं। और जिसको वही राधा जी का ही मंत्र मिल गया तो फिर उसके लिए क्या था?
नमो महाबदन्नाय कृष्णते मापदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरवस्तुते। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जयस्तुते। गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गीरा देवीन्द्रायणी कान्तते मध्य लीलाश्रम परिचय करा रहा हूँ और महापुरुष गीता संवाद। हम लोगों ने चैतन्य महापुरुष जी और रायानंद के लिए साध्य साधन तत्वों के संबंध में रायानंद की स्थितियों को हम लोगों ने उसमें राधा कृष्ण को श्रद्धा बदली साधु क्या बतलाया योगी भाव से और उन्होंने कुछ कहने के लिए आगे कहने के लिए किया। यद्यपि साध्य अवधि उन्होंने बतलाया तो भी और कुछ कारण मतलब है और कुछ बाकी रह गया और उसके लिए चार से पूछा कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व और ये चार चीजों के लिए आप इसके संबंध में बतलाई। उन्होंने कहा है जिस काम के वो तो देखते हैं कि आप ही के द्वारा पूरा हो रहा है, हमारे ऊपर में साफ हम भ्रष्टाचार जी ने की बात की और मैं यहाँ आया वैसा ही आपको देख रहा हूँ। रामानंद जी कहेंगे कि आप जो हमसे प्रेरणा हमारे हृदय में कराएंगे वही मैं कहूँगा, मैं हूँ बिना आप हैं बिना तंत्र को बजाने वाला। कभी जी ने उत्तर दिया मैं मायावादी सन्यासी हूँ, शक्ति सब समय कुछ नहीं जानता, मायावाद नहीं के समुद्र में मैं डूबता उतर आता हूँ। सार्वभौम से जी के साथ में हमारा मन कुछ निर्मल हुआ और उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण कथा कुछ नहीं जानता, राय रामानंद के पास में गया और आप मेरी वंचना कर रहे हैं, मैं आपके पास में आया हूँ, कभी आप जैसी प्रेरणा देने में कहा। कह रहे हैं परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान अनंत वैकुंठ अनंत अवतार अनंत ब्रह्मा जिन्हा सवा आधार सचिदानंद स्वरूप गजेंद्र नंदन सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रत्न पूर्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहिता का ये उपयोग दिया इसके उदाहरण इसके प्रमाण में ये ईश्वर परम कृष्ण है उसका इन्होंने ये तीन मनुष्य इन छायों में बहुत ही सुंदर और जहां तक अर्थ हो सकता है उन्होंने किया, यदि प्रवेश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। श्लोक में जो है उसको एकदम मुक्त प्रग्रह रूप से इसकी व्याख्या उन्होंने की, ऐसा सुंदर अर्थ कोई हो ही नहीं सकता। इसी तरह से श्रीमद्भागवत के जितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं सब उन्होंने चैतन्य से संग्रह ले लिए हैं, संग्रह करके लिया और उसका अर्थ जैसा कि रघुनाथ ठाकुर ने इनको कहा था ये रामानंद और प्रभु दामोदर के साथ महाप्रभु कैसे आस्वादन करते हैं उन्हीं को इसी तरीके से अर्थ किया। भागवत के टीकाओं में भी जो नहीं मिलेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन सबका बहुत ही सुंदर अर्थ किया। ये भी एक भागवत के ऐसी जाकार ही है,
इतने अद्भुत रहती है इतना अलंकार और इतना साहित्य सामने आए इस प्रकार से मैं भले
तुम वहां से पढ़ नहीं करते भजन के द्वारा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं भगवान की भगवत्ता दो प्रकार की होती है, एक सर्वैश्वर्य पूर्ण और दूसरा होता है सर्वरस पूर्ण, एक रस की दृष्टि से और एक होता है ऐश्वर्य की दृष्टि से, मैंने एक माधुर्य की दृष्टि से और एक ऐश्वर्य। तो यहाँ पर पहले ऐश्वर्य का उनका वर्णन कर पहले लाइन में ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण, इसके देखने से मालूम होता है सब प्रकार के जो ऐश्वर्य है उन्हीं का वर्णन किया, किंतु उसमें माधुर्य का भी वर्णता का कारण कारण ने वो सब ले लिया और सच्चिदानंद विग्रह में वो लिया। तो ये कर रहे हैं स्वयं भगवान जिससे सब लोगों की सब अवतारों की
अवस्था होती है। जैसे एक ही चंद्र अपनी 15 कलाओं में 16 कला में 16 कला में वो प्रकाशित होता है। एक ही चंद्र, चंद्र दो नहीं, एक ही चंद्र है। किंतु पृथ्वी के घूमने से और ग्रहों के स्थान के ऊपर में रहने से यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, पृथ्वी लोक के रहने वाले लोग चंद्र को प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या इस रूप में देखते हैं। चंद्र में ऐसा कुछ है ही नहीं, चंद्र में स्वरूपता कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतनी कलाएं है नहीं है। किंतु छाया के वजह से सूर्य और चंद्र और पृथ्वी इन तीनों की स्थितियों के कारण ऐसा ये दिखता है। जैसे सूर्य है, सूर्य में रात्रि और दिन नहीं है, केवल दिन ही दिन है। शाम, सवेरे, दोपहर, रात, आधी रात या अस्तजाम सूर्य में नहीं है, है कुछ नहीं है। किंतु कैसे दिखता है? वो तो नित्य प्रकाश सूर्य है, उनमें न आधी रात है, न दिन है, न 12 बजे का है, न 8 बजे का, न 6 बजे का। सब समय एक ही समान नहीं होते, सब समय एक ही समान ताप और प्रतीक है। किंतु वो दिखता है कैसे? तो वो ऐसे दिखता है हम लोगों के यहाँ। जब पृथ्वी सूर्य के दूसरे तरफ में घूम आती है दूसरे दिन से, तो आधी रात हो गई, सामने आए तो दिन हुआ, जब छिपने लगे तब शाम हो गई, जब उठने लगे तो सवेरा हो गया। यथार्थ में सूर्य में कुछ भी नहीं है, ये सब अवस्थाएं। इसी तरह से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वयं भगवान, तो जो स्वयं रूप कृष्ण है वही ब्रजेंद्र नंदन, उनमें ही साधना के तात्पर्य से वो कृष्ण के अनेक रूप जैसे दिख पड़ते हैं, किंतु है नहीं। साधना के तात्पर्य से ही ऐसा दिखता है। जैसे सूर्य और चंद्र के ग्रहों के चाल पर, स्थिति पर सब कुछ ये निर्भर करता। वैसे कृष्ण जैसे चंद्र या सूर्य परिपूर्ण रूप में है, चंद्र उसकी समस्त कलाएं देखती हैं, वो भी पूरी कला नहीं देखती। चंद्र पूरा दिखता है, पूर्णिमा के दिन आधा दिखता है, सामने वाला आधा दिखता है, पीछे वाला दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता है, केवल आधा ही दिखता है। तो भी पूर्ण रूप से गोलाकार दिखता है, इसलिए उसको पूर्ण चंद्र मान लिया। ऐसे ही पूर्ण चंद्र के रूप में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और उन्हीं के अंश या कला सद्रूप वैभव अवतार, ये जितने भी अवतार अधिकांश रूपों में 24 अवतारों की बात बतलाई है भगवान के, 24 अवतार, जिनमें राम, कृष्ण, राम और परावर्त कहा गया है, उनको परावर्त कहा है। सभी राम इत्यादि जितने हैं उनके अंश और कला इत्यादि, नारायण द्वारकाधीश इत्यादि से आरंभ कर
बलदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और नीचे में जितने भी अवतार हुए हैं ऐसा कृष्ण स्वयं रूप है भगवान उनके अवतार मान लीजिए भागवत इत्यादि में सब में ऐसा ही कहा गया है। सर्व अवतारी समस्त अवतारों के वो मूल अवतारी हैं। सर्व कारण प्रधान समस्त कारणों के भी ये प्रधान है अर्थात सर्व कारण मैंने क्या उस जगत के जीव जगत के और ब्रह्मांड जगत जितने भी कारण हैं समस्त कारणों के मूल कारण अच्छे पानी पानी कैसे हुआ पानी तो हम देखते हैं किंतु पानी का कुछ कारण तो कैसे पानी बनता है
रस गुण
क्या क्या चीज मिल करके ऑक्सीजन और क्या क्या
मिलता
है वो कहाँ से आता है वो कहाँ से प्रकृति से आया प्रकृति कहाँ से आई कर्णाब्दिशाही से कर्णाब्दिशाही कहाँ से आए नारायण मूल आम वो महासंकर्षण महासंकर्षण कहाँ से आए बलदेव जी से बलदेव जी कहाँ से आए इसी तरह से सब जितने भी कारण हो सकते हैं सब कारणों के मूल कारण वही अनंत वैकुंठ जितने भी वैकुंठ हैं और अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार आधार सबके आधार मूल कारण ये सब सच्चिदानंद संग ब्रजेंद्र नंदन सच्चिदानंद ब्रजेंद्र नंदन सत चीत और आनंद से युक्त सत मैंने सत के अधिष्ठात्री बलदेव प्रभु उसे समझनी शक्ति और उसे जितना रूप वैकुंठ जगत में जीव जगत में और इस ब्रह्मांड में माया इस जगत में जितने भी रूप हैं देखे जाते हैं जो कुछ देखा जाता है वो सब संगनी शक्ति से होता है ये बलदेव प्रभु जी से और बलदेव प्रभु कृष्ण से निकलते हैं और किस माने होता है ज्ञान जानना बच्चा जन्म से ही उसका एक शरीर होगा और वहीं से जानना आरंभ करेगा जहां ज्ञान का विकास हुआ ना उसे लगे ये कौन ये क्या वो क्या जो कुछ देखेगा वही पूछेगा जैसे ये क्या ये ज्ञान और आनंद आनंद भी चाहेगा सभी आनंद चाहते हैं सचित आनंद की जहां इसकी परिपूर्णता पूर्णतम अवस्था है उनका नाम ब्रजेंद्र नंदन वे संबित संधिनी और ग्लादिनी इसके अधिष्ठात्री देव बलदेव प्रभु राधिका और कृष्ण तीनों के सम्मिश्रण होकर के तो ये ब्रजेंद्र नंदन चांद सर्व ऐश्वर्य सर्वैश्वर्य और सर्वशक्ति जितनी भी शक्तियां हैं सब शक्ति और सब रसों से ये परिपूर्ण है सर्वशक्ति सर्व ऐश्वर्य न्याय इत्यादि में जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब इनमें है उससे भी परिपूर्ण मात्रा में है पूर्णतम मात्रा में सब शक्तियां हैं
ये समस्त शक्तियों के आधार है और सर्वरस पूर्ण ये ऐश्वर्य और शक्तिमत्ता की दृष्टि से राम नृसिंह बामन कल्कि नारायण सबको एक अद्वैत तत्व माना गया है। किंतु जहां रस का विचार होता है रस के द्वारा ही इन तद्रूप वैभव अर्थात अवतारों की श्रेष्ठता माने वैशिष्टता प्रतीत होती। नारायण भी सर्व ऐश्वर्य है, कृष्ण में थोड़ा सा ये है कि परिपूर्णतम मात्रा में किंतु है सभी, राम में भी है नृसिंह भी है, एक ही तत्व है, दो तत्व तो है ही नहीं। किंतु यदि कहा जाए जो कृष्ण में जो चीज है नृसिंह देव में भी वही है या राम में भी वही है तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाए। यदि कहें ये है तो राम में और नृसिंह में पूर्ण प्रकाशित नहीं है तो भी ये चीज है। क्यों नहीं थी? राम उसी का नाम है
प्रकाश नहीं है
तब नहीं सभी इनका नाम राम कृष्ण में ये सब चीजें हैं। जब अढ़ाई रस प्रकाशित होता है उनको राम कहेंगे, ये बात तो ठीक है ऐसे समझने की चेष्टा है। कृष्ण परिपूर्णतम है, उनमें 12 रस हैं और सर्वशक्तिमत्ता भी है और सर्वशक्तियां भी इनमें है और सर्व ऐश्वर्य भी है। अब इनमें से भगवान अघटन घटन प्रत्यक्ष सर्वशक्ति से युक्त हैं।